सर, सबसे पहले आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डाइट में क्या है
जी,
पहले वो बता दीजिए।
मेरा नाम गौरव त्यागी है, मैं यहाँ पर लेक्चरर हूँ फिजिक्स में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज अ साइंस फैकल्टी, मतलब साइंस रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें, और प्रबंधन विभाग में हूँ मैं।
अच्छा,
मतलब जो प्रबंधन डाइट का जो प्रबंधन डिपार्टमेंट है उसमें।
अच्छा,
ये है
सर आपका।
मैं धीरेंद्र सिंह, और जो प्री सर्विस है, प्री सर्विस में मुख्य रूप से जो एजुकेशन वाले सब्जेक्ट हैं उनको हम पढ़ाते हैं।
अच्छा,
साथ में इन सर्विस जो ट्रेनिंग है उसके लिए समय समय पर इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं। बाकी जो विभाग हैं वो तो लगभग उस पर काम नहीं कर रहे हैं।
अच्छा,
लगभग लगभग क्या है, डेड की स्थिति में है। बाकी दो जो विभाग मुख्य रूप से इन सर्विस ट्रेनिंग और प्री सर्विस, प्री सर्विस में हमारे यहाँ DLED कक्षाएँ और प्लस इन सर्विस ट्रेनिंग में जो हमें प्रदेश स्तर से हमें मिलती हैं देने के लिए, उन्हें लेते हैं और देते हैं।
सर, तो इनके अलावा कि अपना सब्जेक्ट लेने के अलावा और ये ट्रेनिंग के अलावा और भी कुछ आपके पास काम रहते हैं?
डाइट में बेसिकली 7 विभाग हैं बेसिकली जो हैं, जो एक्टिव होने चाहिए।
जी जी।
लेकिन फिलहाल जो कार्य जो डाइट में होता है, 7 विभाग का ये डेटा है, ये 7 विभाग हैं, ये देख लीजिए प्लीज
जी।
ये है प्री सर्विस, ये सेकंड है वर्क एक्सपीरियंस, ये थर्ड है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट DRU, और ये फोर्थ है इन सर्विस
प्रोग्राम,
ये नंबर 5 है करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट, ये नंबर 6 है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और ये 7 है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर डाइट में बेसिकली ये सारे विभाग एक्टिव होने चाहिए
जी।
लेकिन फिलहाल कोई भी विभाग एक्टिव नहीं है, सब डेड है।
लगभग दो ही समझ लीजिए, प्री सर्विस में DLED का कोर्स चल रहा है, इन सर्विस में जो ट्रेनिंग हमें ऊपर से मिल जाती है वो। हालांकि ये सभी विभाग साथ में प्री सर्विस और इन सर्विस के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो प्रदेश स्तर पर हम जो हमारी बुक्स हैं
जी,
जो बेसिक की बुक्स हैं उनको किस तरह डिजाइन करें, करिकुलम क्या डेवलपमेंट करें, और साथ में अन्य जो ट्रेनिंग है मॉड्यूल है उनको डेवलप करें, ये भी है। परंतु हम ये करते कुछ नहीं हैं, हमें ऐसा कोई काम दिया ही नहीं जाता। और ये 7 विभाग जो हैं इसी के हिसाब से 6 यहाँ वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं, सीनियर लेक्चरर, और एक वाइस प्रिंसिपल होता है जो वाइस प्रिंसिपल DRU के लिए है।
अच्छा,
तो ये रिसोर्स यूनिट के लिए स्पेशली,
ये भारत सरकार की बुक है जो इसमें काम दिए गए हैं हमें
जी, जी।
तो इसके अनुसार तो हमारे केवल 2 विभाग कार्यरत हैं, बाकी 5 यूनिट हमारे
प्री सर्विस और इन सर्विस, ये 2 विभाग कार्यरत हैं। इन सर्विस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए CRT ने कोई ट्रेनिंग शेड्यूल की तो वो ट्रेनिंग वहाँ से लेने के लिए कोई लेक्चरर यहाँ से भेजा जाता है, उस लेक्चरर ने वो ट्रेनिंग
जी।
फिर यहाँ पर आने के बाद वो ट्रेनिंग फिर कंडक्ट करता है, दूसरों को देता है
जी।
और फिर वो ट्रेनिंग आगे बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा बाकी कोई इनिशिएटिव नहीं है किसी डिपार्टमेंट का, कोई इनिशिएटिव।
सर, क्या आपको रीजंस क्या लगते हैं कि इतना फंक्शनल नहीं है ये बाकी डिपार्टमेंट्स?
ये बिलोंगिंग नहीं है।
अच्छा,
मतलब अगर सपोज कीजिए जो सीट्स पर बैठे हैं जो ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं तो उनकी बिलोंगिंग होनी चाहिए, मतलब ये 7 विभाग एक्टिव होने चाहिए, ऑन पेपर इसमें ड्यूटी लगनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर दिया है प्री सर्विस में सीनियर लेक्चरर की ड्यूटी होती है, उसके अंडर में पूरी टीम बनी होती
जी,
है
जी,
लेकिन ऐसा कुछ
लेक्चर्स कितने हैं, संख्या 11 संख्या है इसमें लिखा हुआ है कितने लेक्चर्स काम कर रहे हैं, वो है हमें किसी को नहीं पता, हम प्री सर्विस में कौन कौन है।
अच्छा,
हमको भी नहीं पता हमें कौन से विभाग में काम कर रहा हूँ।
मतलब एक जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना दिया, एक हेड बना दिया, उसके अंडर में पूरी टीम बना दी, उससे रिलेटेड जो काम है फिर उसको दिए गए कि ये काम आपको यहाँ पे जो है असाइन किए जा रहे हैं, इनको करना है, ऐसा कोई शेड्यूल्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है।
इसमें प्री सर्विस में सीनियर लेक्चरर 1 है और 8 लेक्चरर्स हैं।
अच्छा।
जो प्रॉपरली इस प्री सर्विस में काम करेंगे अकॉर्डिंग टू भारत सरकार, भारत सरकार के ये डाइट जो 1989 में बुक छपी थी, इनमें एक पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी रहे भारत सरकार का, पूरी प्रदेश पूरे इंडिया के डाइट्स में, तो ये उन्होंने सौंपी थी हमें, दी थी, उपलब्ध कराई है। तो इसमें इसके अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, इसके अनुसार अगर हम बात करें, हमें खुद नहीं पता विभाग को, सीनियर लेक्चर खुद नहीं पता। अगर किसी सीनियर लेक्चर को ये नहीं पता होगा मैं किसका हेड हूँ ब्रांच का, तो वो कैसे लीडरशिप मिलेगी उसमें, कैसे बढ़ाएगा, कुछ पता ही नहीं।
तो सर आप अपने कंसर्न्स बता सकते हैं किसी को, सीनियर लेक्चरर्स को या प्रिंसिपल?
हमने प्रिंसिपल जी सर से भी चर्चा की थी इस बारे में, परंतु उन्होंने कहा छोड़ो, वरिष्ठ प्रवक्ता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, चार वरिष्ठ प्रवक्ता हैं यहाँ पे, एक वाइस प्रिंसिपल है, पांच विभाग चल सकते हैं, एक्स्ट्रा देकर कार्य साथ भी चल सकते हैं और किसी को जिम्मेदारी दे के, परंतु उन्होंने कहा अरे छोड़ो जो ना, मतलब कोई रुचि नहीं है इस चीज़ में। ये है मैम। और इनकी यहाँ पे एक कारण और रुचि का भी, वो मुख्य रूप से जैसे हमारे सीनियर लेक्चर ही हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशंस है इनमें 5 साल मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए
भारत सरकार ने,
भारत सरकार ने, परंतु और उसमें 3 साल मिनिमम क्या है हमारा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस। परंतु यहाँ पर आप देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो भर्ती निकलती है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एमए प्लस बीएड मांगते हैं, लोक सेवा उत्तर प्रदेश का विज्ञापन है,
मतलब भारत सरकार डिमांड एक्सपीरियंस कर रही है और जो वहाँ से जो वैकेंसी निकली है
उसमें जब इन्हें कोई टीचिंग टीचिंग का एकेडमिक कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो इनकी क्या रुचि होगी, यदि सोचते हैं हम तो यहाँ से बीएसए बन जाएंगे एडीएस बन जाएंगे, तो इस तरह से इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि जब लीडर ही जब हमारा आगे बढ़ने वाला ही जब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो बाकी जो सपोर्टिंग टीम है वो क्यों बढ़ेगी। आप इसमें देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है ईच ब्रांच मे बी हेडेड बाई ए पर्सन हु वुड बी जनरली डेजिनेटेड एज ए सीनियर लेक्चर विद नेसेसरी नंबर्स ऑफ लेक्चरर्स टू सपोर्ट हिम। ये नंबर हमने दे रखे हैं लेक्चरर्स के, लेक्चर सीनियर लेक्चर के सपोर्ट के लिए होंगे। साथ में यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए लिखी है कि वो टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी और नोडल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें लिखा है, और सब कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके अनुसार यहाँ पे कोई माहौल नहीं है कोई भी। अब ये क्या है, जैसे हमारे 6 महीने लगभग रहे वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप जी, वो जाके हाथरस में बी एस एच बन के चले गए, अब हो सकता है कल को नाम इनका लिस्ट में आ जाते, ये चले जाएंगे तो यहाँ का काम क्यों करेंगे। जबकि इसमें मैं दिखा दूंगा, इसमें इस बुक में ये लिखा था कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों को जो डाइट के प्रॉपर लोग हैं, क्वालिफिकेशन है इन लोगों को, वहाँ पर मौका दिया जाए काम करने का, परंतु हो उल्टा रहा, उधर के लोगों को जो इसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहे उधर इधर मौका दे दिया जाता है, और ये इसे एक सजा के रूप में मानते हैं कि कब हम डाइट से निकल के भागे हैं
सारे में, वहाँ पे उनको ज्यादा मजा आता है, वो ऑफिसर क्लास अच्छा रैंक पे उन्हें अच्छा लगता है, और यहाँ पर एकेडमिक लीडरशिप करने में उनको लगता है कि ये मतलब क्या फिजूल के काम हम कर रहे हैं।
तो सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने जो बोला कि वो यहाँ पे आते हैं यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तो अगर कोई प्रिंसिपल आए है, सीनियर लेक्चरर आए है, उनकी भी तो कोई मेंटरिंग या फिर होती होगी ना, कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या क्या, मतलब उनको भी तो कुछ दिखाना होता होगा, तो हाँ, वो कैसे वो करते अगर कुछ हो नहीं
रहा है। दरअसल प्रदेश स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वो इन्हीं में से लोग हैं सारे, इनका ही जैसे ये है जेडी बन गए, एससीईआरटी पहुंच गए, तो यही जो कैडर है जो पीएस कैडर है यही लोग वहीं पहुंचते हैं, तो इन्हें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, पता भी नहीं है, तो ये सिर्फ पूछ लेते हैं कि डीएलएड का क्या चल रहा है और हमारे निपुण लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, इस तरह के ये इन विभागों तक तो पहुंच ही नहीं पाती कि वास्तव में ये कारण
है। नहीं, कुछ नहीं होता
डाइट के, इन विभागों का एग्जिस्टेंस जो है वो एससीईआरटी को भी मतलब
ढंग से नहीं पता, अगर डिस्कस करके देखेंगे उनको नहीं पता कि ये विभाग ये कार्य सौंपे गए
हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दे दी वो तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है सेंटर, हम अकेले राज्य के थोड़े ही है, सेंटर का भी हिस्सा है, कितना 60% हिस्सा है सेंटर का बजट में जो हमारे वेतन में आता है, उनकी योजना है पूरे भारतवर्ष में, तो उनके जो बनाए गए नियम उनको फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर हम महानिदेशक जी की बात कर लें तो ये महानिदेशक जी नॉन एकेडमिक हैं, इन्हें जो प्रिंसिपल बता देते हैं हमारे बारे में बुराई बता दी कुछ हो रहा तो वो स्वीकार कर लेंगे, नहीं बताई तो उन्हें भी नहीं पता अभी तक, हालांकि वो मीटिंग के लिए अब कह रहे हैं, हमें उम्मीद है हम उनके सामने ये बात रखेंगे जल्दी, इस महीने मीटिंग के लिए कह रहे हैं डी जी सर कह रहे हैं।
आपने डायरेक्टली कभी प्रिंसिपल से ये बात करने की कोशिश
खूब की वो नहीं स्वीकार
कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आपको जो एकेडमिक,
अभी इनसे ही की थी मैंने, मैम कोई इंटरेस्ट
नहीं एकेडमिक से नहीं है, वो इंटरेस्ट क्यों लेंगे।
मैंने कहा था कि सर पहले 7 विभाग तो हमारे लगभग 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी, 7 विभाग तो हमारे चले पहले कम से कम, बोले कि अरे ये सीनियर लेक्चर आते जाते रहते हैं ये तो रहते नहीं यहाँ पे, छोड़ो।
तो सर अभी हमने सीनियर लेक्चर से बात की थी तो उनको पता है कि उनकी डिपार्टमेंट्स कौन सी है, तो इसमें क्या काम हो रहा है ये हमने भी नहीं पूछा था तब, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोफेसर होने चाहिए, अलग अलग लेक्चरर्स होने चाहिए, कि एक लेक्चरर ही सब
पहले मुख्य रूप से अलग हो, परंतु सारी डाइट के लिए जहां भी जरूरत पड़े वहां पे वो यूज किया जा सके, मुख्य रूप से कैटेगराइज किया जाए,
जैसे कोई प्री सर्विस डिपार्टमेंट बन गया, मान लीजिए 7 डिपार्टमेंट बन गए, तो पेपर में बनाए 7 डिपार्टमेंट, फिर उनका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें, तो प्री सर्विस का कोई हेड बना लिया, उसके अंडर में 7 लेक्चरर डाल,
8 लेक्चरर ये
8 लेक्चरर डाल दिए उसके अंडर में, फिर इन सर्विस डिपार्टमेंट बन गया, उसका कोई हेड बना दिया, उसके नीचे फिर 7 लेक्चरर डाल दिए, ऐसे
वो 7 काम करते रहे, परंतु जहां भी डाइट को किन्हीं भी कार्यों की जरूरत हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली हो, वो एक दूसरे में जा सकें, परंतु फिर भी डिफाइंड हो कि ये लेक्चर्स यहाँ करेंगे, ये यहाँ करेंगे, अगर लग रहा है कि इनकी सहायता की जरूरत है तो वहाँ करेंगे, ऐसा नहीं कि वो सेपरेट विभाग बन गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी डाइट की कलेक्टिवली है 7 विभागों की, परंतु ये 8 अलग अलग करे जाएंगे, करे जाने चाहिए।
सर इनकी चेकिंग भी तो होती होगी कि
कोई चेकिंग
नहीं होती,
कोई चेकिंग नहीं होती, बस मैम चेक किया, पीछे ऊपर से लेटर आते रहते हैं, उनको जवाब बना के भेजते रहते हैं।
इसका एक सजेशन ये भी है कि ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए जैसे मंथली कोई मीटिंग होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मीटिंग होती है, तो हर मंथ के एंड में अगर ये मीटिंग होनी शुरू हो जाए कि डिपार्टमेंट वाइज जो है अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करें कि हमने इस मंथ में क्या किया है ना, और आगे क्या योजनाएं हैं, तो ज़्यादा बेटर।
मैम आप इसमें देखिए जो करिकुलम डेवलपमेंट है, मेटर डेवलपमेंट, इसमें हमारे यहाँ क्या हुआ, किससे पूछ कर दी, किसी को पता ही नहीं क्या हुआ,
DRU यूनिट का कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसोर्स यूनिट होती क्या है?
और हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ऑडियो विजुअल वगैरह डेवलप एड डेवलप करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप देख लीजिए कहीं भी ईटी ब्रांचेस कहाँ है हमारे डिपार्टमेंट,
नहीं बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच में काम नहीं होता, खाली 2 ब्रांच में काम होता है, एक प्री सर्विस और एक,
और यदि इनसे पूछने भी लगे कि इनके क्या कार्य हैं तो अपनी मर्जी से कुछ ही बता देंगे, कुछ ही मर्जी से बताएंगे, परंतु सबसे पहले तो जो आइडियल फॉर्म है हमारी भारत सरकार ने जो दिया है, हम उसे मानेंगे या अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे, हम तो इन्हीं काम को कर दें तो हमारी डाइट बहुत डेवलप हो जाए। हम एक तरफ से यहाँ की जो जो हमारे बच्चे हैं प्राइमरी वाले, उनके लिए करिकुलम डेवलपमेंट करें, ऑडियो विजुअल एड डेवलप करें, टीचर्स को हम प्रोवाइड करें, तो उस समय क्या है उनकी एजुकेशन, उनका जो लेवल है ट्रेनिंग दें तो वो भी डेवलप होगा, वो भी बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, तो परंतु ऐसा होता नहीं मैम कुछ भी, हम अक्सर खाली बैठे रहते हैं, हम पर हमें बहुत बेकार लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कागज़ दे दिए, कागज जवाब देना है, इधर ये डाटा कलेक्ट करके देना है, कागजों में ढूंढ ढांड के जवाब दे दिए, ये करते रहते हैं, बाकी एक क्लास मिल गई, 2 क्लास मिल गई करने के लिए, ज्यादा
लेक्चर सबके अपॉइंटेड हैं,
लेक्चर सबके हैं, हाँ सारे
लेक्चर, केवल लेक्चरर्स के, सीनियर लेक्चरर का कोई लेक्चर,
हाँ टाइम टेबल लगा हुआ है, सीनियर लेक्चर कोई टाइम टेबल नहीं है किसी में, कहीं भी ना ही उन्हें कोई, ना ही उनका रजिस्टर में आप देखे नाम नहीं है, कुछ नहीं है,
कोई वर्क भी डिफाइंड नहीं है,
बगैर डिफाइंड
जबकि होना चाहिए लेकिन डिफाइंड नहीं।
सर हाँ जी बोलिए, तो सर ये जो ये SCERT को तो ये पता होना ही चाहिए कि
बिल्कुल, हाँ पता होना चाहिए,
पता होना, पता होगा भी शायद,
होगा निश्चित,
लेकिन आप डायरेक्टली SCERT से आपका कोई कांटेक्ट है कि आप SCERT को ये बता पाए?
एक बहुत छोटी सी वहाँ नहीं धीरेन सर, हमें ना वो लोएस्ट पायदान पे मानते हैं, मतलब जो पूरी सीढ़ी है उसका लोएस्ट पायदान जो है वो लेक्चरर है, तो हम तक या तो पहुँच नहीं पाते या पहुँचना नहीं चाहते
या हमारी बात को वजन बिल्कुल देते हैं
या इग्नोर कर देते हैं।
मैम देखिए ये हमारा NCT का गजट ऑफ इंडिया है, इसमें प्रिंसिपल के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें तय है। अब इसकी हम अगर बात करें तो प्रिंसिपल के लिए ये है क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन है एक प्राचार्य विभाग अध्यक्ष के लिए, ये यहाँ पर
पढ़ लीजिए,
हाँ
कम से कम 55% अंकों के साथ विज्ञान, समाज विज्ञानों, कलाओं, मानवीकरण विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि और कम से कम 50% अंकों के साथ MEd, MA शिक्षा या MLed की उपाधि, किसी अध्यापक शिक्षा संस्था में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव।
ये इसके अनुसार कोई प्रिंसिपल है ही नहीं,
हम आप देखें
उन्हें NCT के नियमों का सीधा
उल्लंघन होता है,
जी जी,
फिर वो रहे हैं क्या नाम AD बेसिक, फिर उसके बाद उनको वाइस प्रिंसिपल और सीधे प्रिंसिपल, पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस उनके,
और उसमें ढील देने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ क्या है NCT को अधिकार है ढील देने का, मैंने भी हाईलाइट किया ये, परंतु फिर भी चल रहा है, कोई कभी उंगली नहीं उठाता कोई या कुछ सुन नहीं,
प्रमोशंस अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल जो पाथ होता है इनका प्रमोशन अलग होता है, लेक्चरर्स का अलग होता है,
हाँ बिल्कुल,
वो कैसे डिफाइंड होता है, उन्होंने एकेडमिक ही रखा होगा शुरू में तो?
मैम एकेडमिक नहीं रखा, सामान्य शैक्षिक सेवा उत्तर प्रदेश के नाम से एक हमारी नियमावली है,
91
उसमें ADIS, DIS, ADIS, BSA और सीनियर लेक्चर की कंबाइंड वैकेंसी निकलती थी 2004-05 के आसपास से, उसके बाद वे लोग ही क्या है कि ये सेकंड गजेटेड मान लिया सेकंड सेकंड क्लास गजेटेड,
ये 90
और ये इधर ही वरिष्ठ प्रवक्ता कैडर भी वही है 5400 ग्रेड पे है, तो ये उधर से अपना आप शिफ्ट कर देते हैं।
ये सीनियर लेक्चरर ना और बीएसए
और
एडीआईओएस
ये कुल पद
है, और जीआईसी प्रिंसिपल।
हाँ
तो ये ऐसी शिफ्ट होते रहते
हैं। हाँ इनका ट्रेनिंग हो या ना उसलिए अपॉइंट होना कुछ नहीं,
इनको उठा करके कहीं भी भेज देंगे।
तो सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम रहती है?
हाँ
अच्छा,
नहीं इतना तो एमए ही है, बीएससी
में एमए ही है, प्रिंसिपल में अलग है।
अच्छा,
इसमें अलग है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर लेक्चर के लिए तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मांग रखा
उसने, नहीं सीनियर लेक्चर बीएससी के लिए भी कोई एक्सपीरियंस, वो तो इंटरचेंजेबल है दोनों।
तो सर आप क्या लगता है सीनियर लेक्चरर को किस में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, एकेडमिक में या एडमिनिस्ट्रेटिव में?
नहीं यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पोस्ट ही नहीं है मैम,
वर्क ही नहीं है ना
यहाँ पे। भारत सरकार का देखा है उसमें कोई स्टाफ में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव ही स्वीकार करते रहते हैं उनको, कोई स्पेशल पावर तो है नहीं। भाई ये कार्य है, ये कार्य वो करेंगे, हम उनके लिए सपोर्ट के लिए होंगे जो इसमें दे रखे हैं, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव को यहाँ पोस्ट नाम की है नहीं, क्योंकि ये उधर से आते हैं यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मान के रहते हैं अपने आप को। तो इन्हें क्या है यहाँ पर प्योर एकेडमिक ही व्यक्ति, मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 5 साल का एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस, ये प्रिंसिपल के 10 साल का, वही व्यक्ति आए, उन व्यक्तियों को वहाँ पर भेज दिया जाए तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं होगी कम से कम, पर यहाँ पर जो व्यक्ति है यहाँ पर तो इस इंटरेस्ट का ट्रेनिंग में व्यक्ति स्किल्ड हो, व्यक्ति ट्रेंड हो,
और जैसे रेगुलेशन है ना, जैसे कोई रूल बनाया 10 to 5 का, जैसे 10 से 5 है, 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, या कोई भी रूल है, तो खाली लेक्चरर्स के लिए होता है।
अच्छा,
बाबाओं के लिए
वो तो बाबू तो खेरा लेक्चरर हो गया, तो लेक्चरर के लिए है, सीनियर लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल इससे फ्री है, वो जब चाहे आए जब चाहे जाए, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है।
तो सर आपकी मीटिंग्स तो होती होंगी ना सीनियर लेक्चरर के साथ?
उन्हें तो खुद नहीं पता मैम क्या मीटिंग बताएं, उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या करना, ना ही को उनका इंटरेस्ट है। और एक डेढ़ महीने में आते हैं, हमारे सलमान सर की बात करें वो चले जाते हैं उसे, बाकी पीसीएस का एसडीएम वगैरह तैयारी कर रहे हैं, बाकी कुछ लोगों का भी ऐसा इंटरेस्ट है, जब काम नहीं है तो आदमी क्यों रुकेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ
जवाबदेही होगी तो रुकेगा, आदमी इंटरेस्ट लेगा,
ये सभी डाइट की यही स्थिति है।
सर आपने इसके पहले भी डाइट में काम किया था?
इससे पहले मैंने बेसिक में काम किया था।
अच्छा,
बेसिक में 4.5 साल
मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में,
और उससे पहले मैंने बीएड में पढ़ाया था, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट पढ़ाया था।
अच्छा, तो ये आपकी पहली डाइट की एक्सपीरियंस?
नहीं, डाइट कहाँ पे, डाइट में रिक्रूटमेंट जो हुआ वो 2020 तक यहाँ पे खत्म हुआ उत्तर प्रदेश,
2015 में एग्जाम हुआ पहली बार भारत
में। सभी लोक सेवा आयोग से जो अपॉइंटेड हैं वो सभी 2020 में ही लगभग
18 से 20 के बीच अपॉइंट हुए सारे लोग।
अच्छा,
सभी नए हैं, मतलब पुराना कोई नहीं है।
अच्छा सर, आपको लगता है कि इस डाइट में मेरठ के एक्स्ट्रा हेल्प हुमाना पीपल टू पीपल की वजह से मिल रही है जो चल रही है, या फिर आपको इतना फर्क नहीं महसूस होता?
अब उनका देखिए फिर वही, मतलब एक बहुत स्पष्ट बात है, वो लोग उन लोगों का ज़्यादा फोकस ये है कि हम लोग मतलब अपने एनजीओ को ये दिखाएं कि हम वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कम और शो में ज़्यादा होता है।
अच्छा,
अगर वो नहीं भी हो तो भी कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, हमें तो वैसी क्लास नहीं मिल पाती।
अच्छा,
हम तो संख्या में इतने पर करता, हमें तो वैसी क्लास नहीं मिल पाती।
आपको कोई सहायता उससे नहीं
मिलती? नहीं ज़्यादा ऐसा नहीं,
सहायता क्या, अगर हम यहाँ पे इन सर्विस वर्क में रहे हैं, हम सपोर्ट डिसिप्लिन वगैरह पे, तो क्लास ले लेते हैं, ये है, बाकी हमारी ड्यूटी अलग जगह भी लगती रहती है तो क्लास ले लेते हैं, ये जरूर फायदा रहता है। परंतु ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी में ये कह रहे हैं, हमारी डाइट के जो ट्रेनिंग है और दूसरी डाइट की ट्रेनिंग में कोई विशेष डिफरेंस हो जो साफ साफ दिखता होगा कि वो इनकी वजह से डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस कुछ नहीं दिखता कि हम स्पष्ट कर सकें कि सेल्फ साइंस के इंस्टीट्यूट में या दूसरी डाइट के स्टूडेंट में और हमारे डाइट के स्टूडेंट में कुछ अलग अंतर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखता, जहां जो हेल्प है अलग कुछ नहीं दिखता अंतर।
सर क्लास मतलब जिस तरीके से आप क्लास लेते हैं और जिस तरीके से वो क्लास लेते हैं, तो उसमें कोई अंतर अगर आपको लगता हो तो?
कुछ नहीं
फायदा,
कुछ नहीं,
नहीं एक अंतर है, जो लेक्चरर्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड है कंपैरेटिवली उनके, तो उसमें जो मतलब क्वालिफिकेशन का और लेवल का जो डिफरेंस है वो तो आता ही है।
अच्छा अच्छा, सर अगर आप ये डीएलएड के करिकुलम के बारे में कुछ बता सके?
हाँ मैम,
देखो मैम कहाँ से आता है प्लीज़ आप ये भी बता दीजिए।
इसमें मैम देखो पहले तो हमारे जो नॉर्म्स है इसमें मैं दिखा देता
हूँ,
तो नहीं मैम एनसीटी से बहुत बड़ा, देखो इसमें ये लिख रहा है एनसीटी के, मैं कहाँ मैंने इसे हाईलाइट किया है
जो पुराना चल रहा है अभी, वो है नया,
ये गजट ऑफ इंडिया हमारा 2014 है, एनसीटी ने जो प्रकाशित किया 28 नवंबर 2014 को, इसमें लिखा है पाठ्यक्रम क्रियान्वयन मूल्यांकन, इसमें एक बात संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए इसका संदर्भ निर्धारित करते हुए यह है मोटे रूप से अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्य फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा, आईस कौन सा वो एनसीएफटी 2009-2010 जो हमारा उस वाले के अनुसार, तो वहां से उठाना पड़ेगा हमें, ये एनसीटी में लाइन डाला है इन्होंने इसके अनुरूप होगा, परंतु इसके अनुरूप नहीं है।
अच्छा
भाई, जब इसमें डाल दिया उन्हें पावर प्राप्त है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, वो क्या डिसाइड करेंगे सब कुछ इसमें है, उन्हें पावर है तो उनके अनुसार करना चाहिए। हमारा जहाँ तक की बात करें, हमारी एक रीस्ट्रक्चर गाइडलाइन और दी थी, रीस्ट्रक्चर गाइडलाइन इन्होंने भारत सरकार ने ही 2012 में, जून 2012 में एनसीईआरटी ने स्टडी करी थी इस पर, उन्होंने जो रिकमेंडेशन करी उसके बाद में ये कुछ सिलेबस दिया था मैंने।
अच्छा।
इसमें इसके अकॉर्डिंग नहीं है सिलेबस।
अच्छा।
और एनसीईआरटी 2010 ऑनलाइन है, उसमें देख लो मैम, उसमें डिसाइड कर रखा है काफी कि हमारा क्या क्या पाठ्यक्रम होगा।
तो सर ये सिलेबस किस हिसाब से चल रही है फिर?
ये तो मैम उससे पीछे 2004-2005
में कभी
सिलेबस देखना, सिलेबस में क्या है करो सर, कौन सा लिख रही है उसमें।
अच्छा,
ये सिलेबस होना चाहिए। पेपर देखना करो सर, साइंस का एक दे दो, प्योर बिल्कुल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ये क्या एलसीएम क्या होता है, एससीएफ क्या होता है, पेपर रखे थे
मतलब
मतलब पेडागोजी पे नहीं ले रहे हो सर, बिल्कुल मैथोलॉजी बताओ, जब बच्चे को इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, एनालिटिक मेथड क्या है, सिंथेटिक मेथड क्या है, जब यही नहीं पता होगी तो बच्चा वो कैसे उस एलसीएम को पढ़ाएगा।
जी बिल्कुल जी। तो सर अगर ये सिलेबस आउटडेटेड है और ये सब नहीं है तो आप लोग क्या कोशिश करते हैं ये डालने की ताकि आप बच्चों को ये सिखा सके?
ट्रेडिशनल पढ़ाते,
थोड़ा बहुत डालने का प्रयास करते हैं मैम, बहुत ज्यादा नहीं, उतनी गंभीरता से नहीं, तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं
कि जैसे आप इंटर्नशिप पे भी जाएंगे बच्चे, जैसे पहले सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन रहता है आगे पढ़ाते हैं, तो उसमें अगर आप बच्चों को बता सके कि इस तरीके से पढ़ाया जाए, मतलब क्योंकि आपको तो पता है,
दो तीन चार क्लास हम ऐसे लेते हैं, तीन चार क्लास फिर भी लेते हैं, दरअसल में अब तक तो ये पहला ही सेशन हमारा डायरेक्ट फेस टू फेस हो पा रहा है, इससे पहले जब हमने जॉब शुरू करी थी तभी कोविड आ गया,
कोविड में था,
तो कोविड के प्रॉब्लम में हम ज्यादा ही कर नहीं पाए
जी, ये अपना कोविड के समय कैसे
चल रहा था?
कोविड से जब हम आए थे दिसंबर 2019 में हमने ज्वाइन किया था,
अच्छा।
तो उस समय क्लास ही चल रही थी और उसके कुछ दिन बाद फरवरी में हो गया था,
कोविड में ऐसा कुछ मतलब विशेष नहीं हुआ, ऑनलाइन थोड़ा बहुत चला,
ऑनलाइन चला था,
ऑनलाइन भी ऐसे कोई मतलब बहुत ज्यादा टेक्नो से भी तो सब लोग
नहीं, उससे ज्यादा कोई लाभ नहीं मिला, उससे हमें पता भी समझ भी नहीं पाए ढंग से हम बच्चों को कैसे हेल्प करें यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन ही बच्चों संपर्क किया उन्होंने, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे बच्चों के,
दो सेमेस्टर तो अपग्रेड हो गए थे
18-4-19
कोविड के टाइम पे। फिर आपका कोऑर्डिनेशन कैसे रहा था
इंटर्नशिप वालों से?
नहीं, बच्चों से,
बच्चों से भी
और प्रिंसिपल से, सीनियर लेक्चरर से?
पहले यहाँ सीनियर लेक्चरर नहीं थे।
अच्छा। पहले कोई नहीं था,
पहले यहाँ पर एक ही सीनियर लेक्चरर आते हैं, यहाँ 6 पोस्ट होती है सीनियर लेक्चरर के एक पर्टिकुलर डाइट में, तो पहले यहाँ पर एक ही सीनियर लेक्चरर आते
हैं,
वो भी बहुत सीनियर थे, वो आते नहीं थे।
अच्छा।
तो खाली प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल भी एडिशनल चार्ज था उनके पास, तो प्रिंसिपल सर को मेरिट में काम होते थे, तो हम लोग खुद ही मैनेज करते थे।
अच्छा, तो सीनियर लेक्चरर अभी अभी आए हैं?
ये
अभी अपॉइंट हुए,
नवंबर 2021।
हाँ हाँ हाँ, नवंबर 2021, दिसंबर 2021 में इनका फाइनल हुआ यहाँ।
अच्छा, तो एक साल से है यहाँ?
हाँ, साल भर हो गया।
अच्छा, तो सर आप बीआरसी से आपकी कोई इंटरेक्शन होती है वहाँ पे? बीएसए से कुछ इंटरेक्शन?
बीआरसी पे कुछ जैसे कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हमें मेंटर के रूप में वहाँ अनुसरण करने के लिए भेजा जाता है कुछ ट्रेनिंग्स में, तो हम वहाँ पे कुछ समय के लिए चले जाते हैं, बाकी उनकी ट्रेनिंग में हम क्या चेंज करा सकते हैं या कुछ हम नहीं दे सकते, फीडबैक दे सकते हैं कुछ ट्रेनिंग्स पर जो हमें अधिकृत करते हैं।
नहीं, एक और भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे हम क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए यहाँ पर हैं, तो क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए सबको एक एक ब्लॉक दिए हुए हैं, तो अब जैसे ब्लॉक हमको मिला हुआ है, इन्हें रजपुरा ब्लॉक मिला हुआ है, मुझे खरकोदा मिला हुआ है, तो अगर जैसे हम ब्लॉक में जाते हैं और हम चाहते हैं ना कि वहाँ पर कोई एक्टिविटी डाइट की तरफ से हो जाए, या डाइट की तरफ से हम उनको कुछ मतलब इस तरह से बोल दें कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता।
अच्छा
तो सर आपको क्या लगता है कि अगर डायल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे तो क्या चीज़ें बेटर होंगी?
दो तीन बातें हैं, एक तो जो हमारा जो लेक्चरर जो ग्रेड है इसको थोड़ा सुना जाए, मतलब कुछ बातों को गंभीरता से लिया जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब हमको लोएस्ट पायदान पे छोड़ के, और क्वालिटी एनहांसमेंट में डाइट का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब सबकी कर्तव्य तय हो और जवाबदेही तय हो कि मतलब आपको इतना दिया गया था तो इतना हुआ क्यों नहीं, ये होना
चाहिए। नाम पर जीरो है रिसर्च में, सर ने ऊपर से आया था हमारे पास निर्देश दो लोगों के नाम के लिए, तो रिसर्च में हमने भी अपने टॉपिक दिए तो सर को पसंद नहीं आए, तो दूसरे को दे दिए जैसे कि रिसर्च के बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं रिसर्च वो करेगा अच्छा जाए जो रिसर्च कर रहा है कर चुका है, या रिसर्च इसके बारे में नहीं पता या शकल देख के वो मेरे फेवरेट यस मैन है वो सामने वाला ये करेंगे,
तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने का मेरा सजेशन ये है कि कोई एकेडमिशियन जो होते हैं
वो लीडरशिप करें,
लीडरशिप करें तो उसको शायद ज्यादा अंदाजा हो पाएगी मतलब किस तरीके से,
मतलब एकेडमिक अधिकारी में तो अधिकारी वाली बात का मेरी बात इन्होंने काट कैसे दी, ईगो का विषय बन जाता है वो, ये नहीं सोचते कि हम एकेडमिक ग्रोथ के लिए बात कर रहे हैं, कोई ये हमेशा सुपर कैसा है कैसे बात कर रहा है, जबकि एकेडमिक व्यक्ति उस बात को समझने की प्रयास करता है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें। अब जैसे हमने एक टॉपिक अपना सजेस्ट किया था कि जो निपुण भारत मिशन है जो इसके प्रावधान है
जी,
ये किस सीमा तक लागू एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, अच्छा। हम ये स्टडी करना चाह रहे थे हम डिस्ट्रिक्ट में
जी,
रिसर्च में, तो ये इससे हमें डबल फायदा मिलता, एक तो ये हम देखते हैं कि किस सीमा तक प्रावधान एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, और यदि नहीं किए जा रहे तो उसे एग्जीक्यूट कराते हैं हम
उसमें क्या,
तो हमें क्या है निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो जाती, परंतु ये उस बात को समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अभी तो निपुण भारत मिशन चलाइए अभी कैसे कर लेंगे स्टडी, अरे मैं प्रावधानों के क्रियान्वयन किस सीमा तक हो रहा मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं देखना चाह रहा कि लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त
किया। सर अगर आप अपने एंड पर ही करें मतलब जरूरी नहीं कि
सपोर्ट चाहिए, हम वहाँ जाएंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, अपने साथी से कौन सुनेगा हमारी,
ऑफिशियल सपोर्ट के बिना नहीं कर पाएंगे, ऑफिशियल सपोर्ट जरूरी है।
तो सर आपने निपुण के बारे में बोला, अभी हम प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे वो भी बोल रहे थे ये बहुत मेजर थिंग है जो डाइट काम कर रही है, डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके पास जो ब्लॉक्स है और वहाँ पे जो स्कूल्स है आपको क्या लगता है ये निपुण लक्ष्य किस हद तक सही से चल रहा है वहाँ पे?
सही से तो हम नहीं चल पा रहा, वो ये मान लीजिए टीचर्स की भी कुछ मजबूरी है कि वो उनको प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स की तो अक्सर क्या है ड्यूटी लगी रहती है बी एल ओ पर 3 दिन, 50% तो अधिकतर में कुछ क्लासेस डिस्टर्ब रहती हैं कि एक या दो टीचर की हर जगह ड्यूटी लगी हुई है बी एल ओ में,
कई जगह सिंगल ही टीचर,
कई जगह सिंगल ही टीचर है, तो वहाँ प्रॉपर शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है, तो जब तक कि टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, उसे टीचिंग करने के लिए छोड़ा जाए वो बहुत अच्छा कर सकता है, और अधिक संख्या में समझता हूँ जो मेरा अनुमान है 15-20% टीचर ऐसे हैं जो थोड़ी लापरवाही करते हैं, अन्यथा यदि उन्हें प्रॉपर समय दिया जाए तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, उन्हें फालतू के चीज़ों से मुक्ति मिले, कर रहे हैं प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या जब प्रयास कर रही है तो हम तो उसे पॉजिटिव ही कहेंगे, वो प्रयास कर रहे हैं
बिल्कुल,
और उसका बेनिफिट दिख भी रहा है,
हाँ
ऐसी बात नहीं है दिखाई दे रहा है बेनिफिट, स्कूलों में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सामने आता है, कई स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाते हैं, बल्कि निपुण लक्ष्य छोटे रह गए वो आगे बढ़ गए
बिल्कुल, तो
तो सर जब आप जाते हो स्कूल सुपरविजन के लिए तो वहाँ पे वो प्रेरणा ऐप में आपको सब कुछ डालना होता है, तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक ऐप आपकी सहायता करती है और जो आप डेटा दे रहे हो वो कहाँ पे जाता है उसका क्या होता है?
मैम उसमें भी कई बार डेटा तो हमें जो रियल डेटा उससे थोड़ा हटके देना पड़ जाता है,
अच्छा।
कारण एक तो ये जो जैसे टीचर है कोई बीएलओ पे चला गया उसने बताया मैं तो 4-3 दिन से बीएलओ पे था मैं आज आया हूँ, हमारा वहाँ पे 15वां वीक चल रहा है, वो वास्तव में 15वीं वीक से दिखा रहा हमें 15वीं वीक बता रहा चल रहा वो 10वीं पे ही, अथवा ढंग से ध्यान भी नहीं दे पाया, तो हमें भी क्या है हम भी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि हम इसका मूल्यांकन कैसे करें, यहाँ पे बड़ी ऐसा ही स्थिति में पा जाते हैं।
दूसरा एक और भी है, मान लीजिए ऐप है जैसे सपोज कीजिए और ऐप पर हम डेटा दे रहे हैं और कोई स्कूल है जो बेहद ख़राब है और उसका डेटा गया, लेकिन मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया कि उस डेटा के बेस पर उस पर कोई कार्रवाई की।
मुझे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ
सर, मुझे ये लगता है कि वो खाली डेटा ना स्कूलों की संख्या देखने के लिए देखा जाता है, हमने उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही
है। हम सपोर्टेशन कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी भरते रहे उसका तो ज्यादा अर्थ।
अगर उस डेटा को देखा जाता तो मान लीजिए कुछ स्कूलों का जो नेगेटिव हम उसके अंदर भरते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आगे एक्शन लिया जाना चाहिए,
निगरानी माना चाहिए, कार्रवाई होना निगरानी होनी चाहिए, अनुसरण हो उसका, केंद्र पे विद्यालय फोकस करिए कि ये
कुछ लेटर इशू हो, कुछ जवाबदेही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उस डेटा की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, खाली संख्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको।
अच्छा, तो सर ARPs भी जाते हैं मेंटरिंग के लिए स्कूल्स में सुपरविजन के लिए, तो ARPs और जो आप करते हैं उसमें मतलब आप ARP से बात करते हैं कि उनको भी क्या लगा स्कूल्स में, उनसे क्या इंटरेक्शन होती है?
ARP से यहाँ पे तो मीटिंग में इंटरेक्शन होता है और एक ट्रेनिंग के समय इंटरेक्शन होता है। जब ब्लॉक लेवल को ट्रेनिंग दी जाती है तो अक्सर वो ARP ही ट्रेनिंग देते हैं, ARP को हम देकर भेजते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग, तो उनसे वो बताते हैं, शेयर करते हैं कि वो विद्यालय अच्छा है, वो अच्छे कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो विद्यालय अच्छे नहीं कर रहे हैं उन विद्यालय में दोबारा पहुँचें, उन्हें कुछ बताने का प्रयास करें कि उन्हें कुछ हेल्प मिले, बताने का प्रयास करते हैं।
तो सर उन ट्रेनिंग्स की जो आपकी सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी आपको हेल्प लगती है कि?
मैम ज़्यादातर ट्रेनिंग तो कोई हेल्प नहीं लगती, अब जो
कुछ ट्रेनिंग्स का फायदा,
ज़्यादातर ट्रेनिंग की हेल्प नहीं लगती। एक वो ट्रेनिंग का जितने संदर्भदाता है ना जो ट्रेनिंग देते हैं वो इतनी क्वालिटेबल जो स्तरीय ट्रेनिंग नहीं देते, मैं प्रशिक्षण नहीं देते उससे, बल्कि कई बार हमारा कॉन्सेप्ट वो गड़बड़ा जाता है उनके बताने से, वो कॉन्सेप्ट से हट के बातें कर देते हैं जो कॉन्सेप्ट वास्तव में है नहीं, कॉन्सेप्ट उस पर बातें करते हैं।
सर कहाँ से होती है आपकी ये ट्रेनिंग्स?
ट्रेनिंग या तो हमारे CMAT में, SCERT या राज्य शिक्षा संस्थान, इन तीन जगह ट्रेनिंग करते हैं।
अच्छा, और सर अगर आप डाइट में कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो वो आप खुद कर सकते हैं या फिर वो SCERT से अगर कोई ट्रेनिंग आती है तो फिर सिर्फ वही होता है?
पहले तो अथॉरिटी थी कि हम कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर तो लेटेस्ट में अभी नियम आया है कि जो ना जो सिर्फ राज्य स्तर से ट्रेनिंग होंगी वही ट्रेनिंग आयोजित होंगी, और लोग ट्रेनिंग आयोजित नहीं होगी।
अच्छा, आपको क्या लगता है इसके बारे में?
वैसे तो सही है, परंतु वहाँ पर जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं राज्य स्तर पर उसमें विशेष रूप से या तो जो डाइट के प्रवक्ताएं हो वो ट्रेनिंग दें, केवल वही मॉड्यूल तैयार करें, अथवा प्रोफेसर लोग या जो जो विद्वान लोग हैं प्रॉपर क्वालिफाइड विशेष विद्वान लोग हैं उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग ही ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार करें, ऐसे काम चलाओ ट्रेनिंग ना तैयार करें। वहाँ जाते हैं उसका कोई लाभ नहीं हो पाता ट्रेनिंग का जो मिलना चाहिए, उसे व्यक्ति गंभीरता से भी लेंगे, केवल ये कह देना कि ये SIE का डायरेक्टर हैं, ये CMAT के डायरेक्टर हैं, ट्रेनिंग देंगे, उन्हें तो खुद का अनुभव नहीं है, पता नहीं ग्राउंड लेवल की चीज़ें क्या है क्या नहीं, उनसे कैसे कर सकते हैं ये अच्छी ट्रेनिंग।
कंट्रीब्यूशन पहले से होना चाहिए एकेडमिक्स में कुछ।
जो भी ट्रेनिंग दें वो ग्राउंड लेवल की सभी समस्याओं से अवगत हों और उसके आधार पर वो दें। इस समय सिर्फ क्या सा जो गिनी चुनी बातें हैं, जो शिक्षण संदर्श का है, हमारी इतनी बुक्स आई थी तीनों, इनमें से उठा उठा के बार बार उलट पलट करते ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कुछ नयापन सा है ट्रेनिंग में, कुछ एनर्जेटिक तरीके से हम ट्रेनिंग दें।
अच्छा।
वो ट्रेनिंग हमने प्राप्त की ऐसा नहीं लगता। हाँ एक दो बातें, दो चार बातें कुछ मिल जाती हैं कि हाँ सही है, परंतु तो हमारा कॉन्सेप्ट भी बहुत गड़बड़ा जाता है वहाँ पर। हमें लगता है कि हमने ऑब्जेक्टिवस पे और इस पे जो लेसन प्लान पे हमने अच्छे अच्छे हमारे गुरु जी थे उनसे प्रोफेसर थे उनसे खूब चर्चा की थी, परंतु जो लगता है कि हम यहाँ कुछ यूज नहीं कर पा रहे उसका, और ना ही उसका कुछ प्रॉपर यूज हो पा रहा है यहाँ हमारी बेसिक शिक्षा व्यवस्था में।
अच्छा सर, अगर आप डाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब आपको किस और कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी ताकि आप अपने लेक्चर्स अच्छे से ले पाए?
मैम पहली बात तो ये, जितने इसमें इन्फेक्ट इसमें दे रखे हैं हमारे संसाधन, जो डाइट हमारी बुक है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, इसमें जो संसाधन दे रखे 1989 में दिए थे, आज हम 2022 में आ गए,
आज भी पूरे
2022 कितने हो गए, 33 साल हो गए, 33 साल भी हमारे वो संसाधन नहीं है हमारी डाइट में जो 33 साल पहले मिल जाने चाहिए थे। इसमें एक्स्ट्रा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इसमें लिखे हुए सारे संसाधन, उससे जो यूजफुल नहीं है नहीं हो पा रहे उन्हें हटा दिया जाए, बाकी तो मिल सकते हैं हमारे स्मार्ट क्लास, हमारी क्लास ही नहीं है, 50 बच्चों पर एक क्लास है यदि हमारे नियम में इसमें भी है, और हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं, 200 दो नहीं 400 अलग अलग, तो हमारे यहाँ 8 रूम नहीं है, कि हम क्लास ले सकें। इंटरेक्टिव क्लास नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, बच्चे कितनी जाती है, 1000 रुपये महीना या कुछ 1000 रुपये फीस जाती है साल भर की, एक सेमेस्टर की सारी बिजली की, परंतु बच्चों को पंखे भी नहीं मिल पाते बैठने के लिए, बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पे। जो भी प्रिंसिपल आपको पसंद लगता है वो बाबू से प्रवक्ता जिससे भी करवाते हो बना के भेज देते हैं गुप्त रिपोर्ट जैसे भी है, परंतु इसका होता कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं, जाता जरूर है, जाता जरूर, होता कुछ नहीं,
कुछ होता नहीं।
और सर आपकी जो नीड्स है अगर आप किसी को बताए वो, तो वो साल भर का जो बजट आता है उसमें लागू होता है?
मतलब नहीं, कुछ नहीं होता। मैं
फंडिंग आप
नहीं, नहीं कुछ नहीं, अभी तक ये स्थिति है, हमारी कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, हमारे प्रॉपर जितने प्रवक्ता हैं इतनी कुर्सी भी नहीं है।
हाँ।
ये स्थिति है, उनके पास बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बाबू कमरे में प्रिंसिपल कमरे में तो सब एसी वैसी लग भी रहे हैं फिर भी कुछ कुछ होगा, हमारे में 2 पंखे इन्वर्टर से लगे हुए हैं, बाकी 2 पंखे इन्वर्टर से भी नहीं है, गर्मी मरते रहे वहाँ पर, इधर उधर छुपे घूमते रहते हैं, हमें लाइब्रेरी में बैठने की जगह थोड़ी है हमारी। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी जगह नहीं है, इधर उधर से कुर्सी मैनेज कर ली, हम बैठे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में, आप देखिए वहाँ पर प्रॉपर कुर्सी नहीं है, जितने प्रवक्ता हैं कितने 16 प्रवक्ता चल रहे हैं,
17
तो हमारे 17 प्रवक्ता की हमारी 17 कुर्सियाँ नहीं है प्रॉपर
बैठने,
और हमने बार बार लिख कर डिमांड करी, खूब लिख कर डिमांड की, परंतु नहीं नहीं उपलब्ध होती। भाई हमें कहीं पर स्टडी करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था, ऊपर से आता केबिन बनेगा, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होगी, परंतु व्यवस्था नहीं हो पाती है बिल्कुल भी, यहाँ पर कैंटीन तक की भी नहीं है, हाई डाइट में कैंटीन तो अनिवार्य है,
इसलिए हमें कहीं मिलने के लिए हमने किया था, लेकिन फिर
एकेडमिक में इंटरेक्टिव हमारी क्लास नहीं है प्रॉपर, प्रॉपर हमारे क्लास रूम नहीं है, 200 सीट हैं, नियम के अनुसार 50 बच्चों पर एक हॉल चाहिए क्लास रूम, तो हमारे 8 क्लास होंगे, 400 बच्चे हो गए, 8 हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास किसी भी क्लास में आप देख ली प्रॉपर लाइट वगैरह व्यवस्था भी नहीं है, बाहर बंदरों ने पोटी कर रखी है, वहाँ पर कौन जाएगा, कौन ऐसे माहौल में पढ़ाएगा, उस अगर हम उस बिल्डिंग में जाते हैं तो बहुत गंदगी पड़ी है बाहर, बहुत सारी 2 कमरे हैं, 2 और छोटे छोटे से डोरमेट्री हैं, इनमें 20-25 बच्चे बैठ सकते हैं, जिनमें हमने बच्चे घुसेड रखे हैं,
जो पुराने क्लास
जो नहीं इधर
नहीं जो
डोरमेट्री बनी
है हॉल के पास नहीं है, वो नए हैं जो उधर है, वो
2 पुराने मतलब 4 हैं हमारे पास, 2 डोरमेट्री हैं जो हॉल नहीं क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम से बहुत छोटे हैं।
जी जी
सर, तो जैसे आप केमिस्ट्री के हैं शायद?
नहीं, एजुकेशन।
अच्छा एजुकेशन, अच्छा फिजिक्स के, तो आप जैसे सर ने भी बोला कि पेडागोजी पे नहीं अपन टेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि सिलेबस ही वैसा है, तो फिजिक्स में सर प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते होंगे, तो
यहाँ लैब ही नहीं है ना, लैब सेटअप नहीं है,
तो
अभी लैब के लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं है।
अच्छा।
अभी मतलब ये लाइब्रेरी शायद आगे शिफ्ट, वहाँ पे शिफ्ट होने का है पुरानी बिल्डिंग में, तो फिर ये रूम लैब में कन्वर्ट होगा, तो अभी तक कोई लैब नहीं है यहाँ पर। साइंस
कोई इक्विपमेंट्स है आपकी जो आप क्लास में दिखा सकते हैं बच्चों को?
हाँ थोड़े बहुत इक्विपमेंट ले जाते हैं, वो वर्नियर
के लिए पर्सनल लाए थे, पर्सनल वर्नियर के पास पर्सनल लाए थे, पर्सनल लाए थे,
वो है रेनबोज अपरेटस है, 2-4 ऐसी छोटे मोटे अपरेटस हैं वो ले जा करके दिखा देते हैं क्लासरूम में, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर वो नहीं है यहाँ पे रिसोर्स।
मैम बच्चे ये स्थिति है, अगर ढंग से हम स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, या हमारा नाउन टू अननाउन, ये जो हमारे शिक्षण सूत्र वगैरह हैं, हम इसे कैसे प्रयोग करें कुछ
नहीं पता। अभी पर्सनल एफर्ट से ही अभी 2 बच्चे हैं वो लखनऊ में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो एग्जीबिशन है स्टेट लेवल, तो उसमें वो प्राइज अभी वो जीतते हुए पहुँच गए स्टेट पे, वो लखनऊ में है 5 दिन की उसमें है, तो कल ही पहुँचे हैं वो, तो वो पर्सनल एफर्ट से ही चल रहा है सब, मतलब डायरेक्ट ऐसे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है उसमें।
सर आपका बस एक क्वेश्चन, प्रोफेशनल जो ग्रोथ होती है आपके उसमें लेक्चर में, वो कैसी है, किस कितने साल में, कितने
क्या प्रमोशन का
प्रमोशन क्या है? नियम तो मिनिमम 5 साल पे हम सीनियर लेक्चर बनाने का है, मिनिमम 5 साल हो जाए, और 50% सीनियर प्रवक्ता के जो पद हैं उन पर नियम 2015 में आया था, 2012 में नियमावली बनी थी, 15 में क्लियर कर दिया था 50% है,
210 पोस्ट हैं करीब, तो उन पे जो प्रमोशन होएगा वो जो लेक्चरर हमारे हैं वो 50% लेक्चरर, मतलब 50% पोस्ट, 210 पोस्ट इन लेक्चरर्स को मिलेगी प्रमोशन के,
तो इसका बेस क्राइटेरिया बस वो आपका एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद
ही, उसमें जो जो अपॉइंटमेंट पता नहीं अभी ढंग से क्या करेंगे,
अभी क्लियर नहीं है
उसमें कोई व्यक्ति, उसमें कम से कम ये नहीं है कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कौन नहीं, वो मेरिट बेस पे कुछ नहीं है।
अच्छा। अभी कौन तक जो ये चाह रहे हैं, मतलब SCERT से जो भी लागू है वो ये है कि जिसने पहले ज्वाइन कर लिया
वो सीनियर
है और वो हाँ। प्रमोशन पा जाएगा। अच्छा। जबकि ये गलत है, मान लीजिए मैं मेरिट में, मेरी 3rd रैंक है फिजिक्स में, उत्तर प्रदेश में, तो आप मान लीजिए मैं लेट ज्वाइन हुआ तो एक साथ एग्जाम हुआ, एक ही एडवर्टाइजमेंट था, सब कुछ एक ही था। अब मैं जब ज्वाइन हुआ तो मैं 2020 में ज्वाइन हुआ और हिंदी वाला ज्वाइन हुआ 2018 में। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मुझे ज्वाइनिंग लेट मिली, एग्ज़ाम सेम टाइम हुआ, ठीक है, प्रोसेस सेम टाइम शुरू हुआ, एक ही एड था। अब मैं जूनियर हो गया थर्ड रैंक होते हुए और जो हिंदी वाला है 46 रैंक होते हुए मेरे से सीनियर हो गया, तो ये तो गलत क्राइटेरिया है।
मैम देखो
इस क्राइटेरिया की आपको जान आपको पता है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है?
नहीं, हमने आपत्ति भी भेजी है, उन्होंने जो सीनियरिटी लिस्ट भेजी थी उस पर आपत्ति भी हमने कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आदेश भी लगा के दे रखा है उनको। इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स थे उनके रिगार्डिंग आया था, वो ऐसे ही प्रमोशन हुआ था, एक ही एड था और सीनियरिटी मान ली थी डेट ऑफ जॉइनिंग के बेसिस पे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मेरिट के बेसिस पे एक कंबाइंड लिस्ट बनाइए, फिर उससे प्रमोशन दीजिए, तो लगा के भेजा, पता नहीं क्या होगा।
मैम देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चर, सभी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में, परंतु ये फॉलो नहीं होता बिल्कुल। मैंने यह टैग लगा दिया यहाँ पे फॉलो नहीं होता भारत सरकार की गाइडलाइन भी बिल्कुल। और जो इनके जो इन्होंने जारी करा था, जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र थे प्रोफेसर जी एस राजपूत जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी रहे हैं जी एस राजपूत जी, एनसीटी के पहले चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा। तो जो ना उनसे भी हमारी एक दो बार मुलाकात हुई थी, पर ऐसे मैटर्स में तो सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यक्ति इनको भी अगर इंक्लूड किया जाएगा भाई क्या हो सकता है, आपने तो बुक जारी करी है बाकायदे, तो बहुत हेल्प कर सकते हैं। एनसीटी के पहले चेयरमैन हैं, डायरेक्टर रहे हैं एनसीईआरटी के, तो बहुत इन्होंने काम किया था। प्रोफेसर जी एस नोएडा में रहते हैं जी एस राजपूत जी, भाई जो इसने जो सोच समझ कर कि ये कॉन्सेप्ट डाइट ये काम करेगी, अगर उनकी राय ली जाए कि भाई किस हद तक जो आपने सोचा था वो काम कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या परिवर्तन करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है।
तो सर डाइट की जो गोल्स है, जो डाइट की ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो पेपर में है और जो ग्राउंड में है, आपको क्या लगता है कि उसमें कितना, मतलब आपने बताया ही बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप टॉप एक चीज बता सकते जो हो रहा है और एक चीज जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा?
मैम डीएलएड का कोर्स चल रहा है बस, एक और कुछ नहीं हो रहा,
और जो लेटर ऊपर से आ रहे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं,
उनके कोई महत्ता नहीं है, ग्राउंड वाली महत्ता नहीं है। जो लेटर आ रहे हैं ऊपर से कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसकी कोई महत्ता नहीं है, सिर्फ डीएलएड का कोर्स चल रहा
है, वो दी जा रही है और डीएलएड का कोर्स चल रहा है, जो ट्रेनिंग ऊपर दी जा रही है उसको आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है बस
उस ट्रेनिंग, परंतु वो ट्रेनिंग भी प्रॉपर एफेक्टिव तरीके से ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच पा रही। आप टीचर से बात करेंगे तो टीचर कहेंगे हमारे सर से उतर गई ट्रेनिंग, मत गुलाब नहीं मिल पा रहा।
मतलब सर आपकी कोई भी रेगुलर तो नहीं, फ्रीक्वेंट टाइप की फीडबैक जो लेते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपकी फीडबैक लेनी, एटलीस्ट लेनी चाहिए, उस पे काम तो करना तो बाद में है, ऐसा कुछ होता है? वो एससीईआरटी से हो,
लेक्चर
प्रिंसिपल से हो,
कोई नहीं,
ये कभी भी नहीं,
कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं।
ओके सर, और कुछ है जो आप बता सकते हैं?
मैम एक तो ये है, यहाँ पे जो डीएलएड में है, डीएलएड के कुछ कारण है बच्चे का जो इंटरेस्ट नहीं बढ़ पा रहा डीएलएड में। एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डीएलएड कोर्स बंद होगा, तो और दूसरा कारण ये भी है कि एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स हमारा एक से इसके बाद हायर एजुकेशन में जाने की संभावना ख़त्म, ना तो हम एमएड कर सकते, ना एमएलएड कर सकते, ना कुछ कर सकते। और एक से पाँच तक मुख्य रूप से वैकेंसी निकलती हैं बेसिक में, तो वहाँ तक ही सीमित है, तो इस कारण लोगों का, कोई बच्चों को इंटरेस्ट सा नहीं रहा यहाँ पे। और यहाँ पे जबकि जो बीएड कोर्स है, बीएड कोर्स में एक से लेकर 12 तक के लिए ओपन है, प्लस हायर एजुकेशन के लिए ओपन है, तो लोग यहाँ क्यों करेंगे? ये बंद भी होना है, इसके लिए हायर एजुकेशन में जा सकते, इसके लिए एक से पाँच तक सीमित भी होंगे, इसमें बैक भी बहुत ज़्यादा आएंगी, सेल्फ इंस्टीट्यूशन में 50% से अधिक की बैक आती है,
डीग्रेड हो गया कोर्स,
हाँ
बहुत ज़्यादा
लोगों को इंटरेस्ट, और प्लस हमारे यदि वैसे बात करें
एमएड नहीं कर सकते,
एमएड नहीं कर सकते, और उसमें जो ये है क्या बोलते हैं, पेडागोजी बेस भी नहीं है, कुछ हम गुणवत्ता भी नहीं डिसाइड डेवलप कर पा रहे, उनके कंपटीशन के लिए फायदा नहीं है। आप देख लें उनका डीएलएड का सीट, डीएलएड बीएड के बच्चे का सीट एड करें, तो यहाँ पे जो ना झुकाव कुछ यहाँ पे बंद होने की स्थिति में जा रहा है बिल्कुल। और यदि कितना ही प्रयास करें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे, पहले तो वो अपने लाभ की दृष्टि से देखेंगे बच्चा क्या लाभ है, भाई हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, डीएलएड कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, भाई मास्टर डिग्री तो ले नहीं सकते, एमएड एमएलएड उधर क्या है, एक से पाँच तक सीमित हो गए, वहाँ पर 12 तक है, हायर एजुकेशन का भी ऑप्शन खुला हुआ था, फेल भी हो रहे हैं,
तो क्यों क्यों करेंगे, एमएड कर लें तो
12 एमएड कर लेंगे बिल्कुल।
तो सर क्या आपको लगता है ये एक रीजन हो सकती है कि वो करिकुलम पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे?
हाँ
हो सकता है, इट मे बी।
नहीं ये तो खैर मैम नहीं ऐसा तो नहीं,
नहीं
ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत पहले से चल रहा है, तब तो ध्यान देना चाहिए था। अब से 3 से 4 साल पहले तो बहुत पीक पे था, तब भी ध्यान नहीं दिया। गौरव सर निकालने के बाद सिलेबस कौन साल का बना हुआ, 2004 का कब का
सिलेबस?
नहीं डी एल एड का, इसमें इसमें जो था पिंक बुक। मैम ये तो सब आपके लिए है, इसमें मैम मैम सब कुछ आपके लिए मैम, इसमें कहीं भी लगता हो मैम मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए। मैं और भी चीज़ें का NCFT वैसा सिलेबस जो है हमारा मेनली NCFT 2009-10 से हमारा जो है वहाँ से मिलना चाहिए सिलेबस उन्होंने। हाँ मैम ये आपके लिए मैंने निकाले, इसलिए है मैंने।
और ये लेवल भी इसीलिए लगा रखे हैं आपको, ढूंढना ना पड़े।
बस यही है इन सर्विस में भी ट्रेनिंग जो है हमें हम कम से कम हमारे साथ ही या क्वालिफाइड व्यक्ति ही दें जो वास्तव में वहाँ से मजाक न बनाए वहाँ पे कि व्यवस्था में कैसी भी रहे बाकी फिजिकल, परंतु जो हमारी एजुकेशनल जो नीड को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग हो
जी, जी।
जो ग्राउंड लेवल पर उसको कुछ काम हो
जी, जी।
साल भर में 4 ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए, 40 ट्रेनिंग मत दीजिए।
अच्छा ट्रेनिंग भी शेड्यूल्ड होनी चाहिए, ऐसे रेंडम नहीं होनी चाहिए कि आज बुला लिया वो ट्रेनिंग है या 4 दिन बाद रख दी वो ट्रेनिंग है। साल के शुरू में कैलेंडर आ जाना चाहिए कि इस समय से इस समय तक ये ट्रेनिंग है, इस समय से इस समय तक ये ट्रेनिंग है। अब ऐसा नहीं है कि जब मन करा वो ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी,
उन ट्रेनिंग की बाद में उनका इफेक्टिवनेस भी देखा जाए कि क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा भी कि नहीं पड़ा, कि इधर उधर ट्रेनिंग फेंके जा रहे हैं। ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस जरूर देखी जाए ग्राउंड लेवल पे, इसका क्या प्रभाव हुआ
बिल्कुल,
और फीडबैक
उस फीडबैक से क्या हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़िया दे पाएंगे।
ये कभी नहीं हुआ,
ये कभी नहीं होता।
फीडबैक कभी नहीं ले जाता किसी भी चीज से रिलेटेड।
सबसे बड़ी बात यह है कि डाइट में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनसे ही कोई फीडबैक नहीं लिया जाता, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम देखो मैम मैं तो सोच रहा हूँ डिग्री कॉलेज की तरफ जाने की कर रहा हूँ, मैं डिग्री कॉलेज का 2 बार इंटरव्यू दे चुका, एक सीट पर मैंने इंटरव्यू दिया था, उस पर छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ था वैसे मेरा, उस सीट पर हम 3 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। और बट अब तक तो मैं 2 साल से फार्म भी नहीं भरा था, अब सोच लिया कि जो ना हमें निकलना है यहाँ से, और हमारे कम से कम 150 साथी हमारे 1280 में से जा चुके हैं डाइट छोड़ कर, यहाँ कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा? मतलब यहाँ पर बहुत यहाँ ये थोड़ी हम यहाँ बैठने के लिए अपॉइंट हुए हैं, इसलिए हमें मुझे कहीं भी अगर मैं डीजी साहब से मेरे सामने बात करती हूँ मैं सामने रख सकता हूँ बात, ऐसी कोई झिझक नहीं कि मेरे अधिकारी हैं जो सही बात हम रख सकते हैं, भाई हम पेपर पर बता रहे हैं, हम पेपर पर रख रहे हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत हम किसी में कमी नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने प्रिंसिपल साहब के सामने भी रख देते हैं, ये भी नाराज हो जाते हैं कई बार, फिर समझ जाते हैं कि सही कह रहा है ये ठीक है। तो
सर यहाँ पे फिर दूसरे जैसे आपने बोला 17 लेक्चरर्स हैं यहाँ पे, दूसरे लेक्चरर्स की क्या राय है जो आप बोल रहे हैं उसमें?
कुछ सेटिस्फाई है अपने मतलब पर्टिकुलर जॉब से, कुछ सेटिस्फाई है
मैम, जो व्यक्ति
कुछ
जो
हताशा हो सकती है,
जिन व्यक्तियों को लग रहा था कि हम एक जॉब इससे बड़ी जॉब मतलब ये जॉब हमें बहुत बड़ी मिल गई, वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, अब अभी नेचर होते हैं व्यक्ति की, और जिन्हें लग रहा है कि हम यहाँ पर कहाँ फंस गए, हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो तो उन्हें तो हताशा होगी
बिल्कुल,
हमें तो हताशा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। हमें उम्मीद थी कि विभाग में बहुत कुछ होगा, परंतु विभाग में कुछ हो नहीं रहा, विभाग में तो हम एक एकेडमिक रूप में अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। कल परसों पेपर हुआ है हमारा, तो उसमें यहीं के लोगों ने कुछ पेपर बनाए थे, तो उसमें बहुत सारी कमी लगातार आ रही थी, मैं ग्रुप पर दिखा सकता हूँ, इंग्लिश स्पेलिंग में भी, क्वेश्चन में इसमें भी, वो लगातार ARP वगैरह आ रहे थे मैसेज ग्रुप पे कि ये कमी है जो NAT वाला था उसमें, तो वो बड़ा ओड सा लग रहा था वो बड़ा, क्या मतलब उसमें गंभीरता नहीं थी, जैसे नहीं तो प्रॉपर एक पेपर बनवाया उसका रिव्यू होना चाहिए था एक कमेटी से कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, तब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता। अब एक व्यक्ति ने पेपर बनाया, उसने कमी छोड़ दी, वहाँ पब्लिश कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुँचा दिया पेपर, उससे हमारा NAT का हमारा असेसमेंट हो रहा है, ये थोड़ी है मैम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है। यही के लोगों ने बनाया,
डाइट में ही बना, लेकिन उसका एक प्रॉपर जैसे सिस्टम नहीं होता,
एक गंभीर
अगर किसी डिग्री कॉलेज में बन रहा होता तो एक कमेटी सेटअप होती, वो पेपर बनाती, फिर प्रूफ रीडिंग होती, फिर उसके बाद फाइनलाइज होता,
इसमें कोई त्रुटि रही
था बना और सीधा चला गया।
ये क्या है, ये गंभीरता नहीं होने का परिचय है,
मतलब हर काम को
एज ए फॉर्मेलिटी
बस ये पूरा कर लो, ये टेंडेंसी होने का।
ये असेसमेंट बनाने की कोई ट्रेनिंग मिलती है आपको?
नहीं कोई ट्रेनिंग नहीं।
फिर तो रिव्यू तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
ठीक।